ओम शांति। यहाँ पांडव भवन में पहली बार कौन आए हैं जीवन में? कैसा लग रहा है यहाँ? क्या है ये? अच्छा, देखा आपने स्वर्ग? जो स्वर्ग लगता है, अच्छा, हम सब में स्वर्ग के संस्कार तो हैं ही, वहाँ की अनुभूतियां भी हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा ने, ममा ने, अनेक महान आत्माओं ने गहन तपस्या की है। ये सब जहाँ हम बैठे हैं, ये बगीचा था सब, यहाँ से आगे का अंगूरों का, उसमें बाबा की झोपड़ी थी। ये नहीं सिंपल झोपड़ी होती थी खजूर के पत्तों की, उसके वाइब्रेशंस जबरदस्त होते थे। सांप का जोड़ा भी रहता था काला, बाबा उसे मारने नहीं देता था। तो ये वो भूमि है जो संसार का सबसे महान तीर्थ, जाकर आने वाले समय में लोग अपने भाग्य का गुणगान करेंगे। वहां हमारा भाग्य, कर लो, वहां हमारा भाग्य। कैसे सुंदर जगह पर आ गए, पंजाब से आप आए हैं, मैं सुना दूं। नांदेड़ में एक गुरुद्वारा है सिखों का, नांदेड़ महाराष्ट्र, सोने से मढ़ दिया गया है कई सालों से उसको, तो मैं वहां गया। तो हम लोग जब जाते हैं, वो जो ग्रंथी आदि होते हैं ना, वहां के बड़ा प्यार करते हैं, बेचारे सम्मान करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, पंजाब में आपका विशेष पंथ है, यहाँ नांदेड़ में कैसे गुरुद्वारा बन गया? तो मुझे बताया कि हमारे फलाने गुरु, मुझे नाम तो भूल गया, क्या नाम बताया था, 3 दिन यहाँ के रहे थे, 3 दिन रहे थे यहाँ के। तो ये तीर्थ है सिखों का, एक गुरु 3 दिन रहे, तीर्थ बन गया। और जहाँ भगवान रहे हों सालों साल, उसके चरण पड़े हों, क्या होगा वो? इसके तो साक्षात्कार भी हुआ करेंगे लोगों को बाहर। यहाँ का पानी अमृत मान लिया जाएगा, बीमारियों को ठीक करने वाला हो जाएगा। तो ऐसी भूमि पर मैं भी यहाँ 28 साल रहा हूँ, और फिर मधुबन शायद वो हो गया, सरोवर शायद 25-26 साल हो गए। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान संसार का, ये जो यहाँ झोपड़ी से और शांति स्तंभ तक एक रास्ता बना दो 10 फुट का, इस पर संसार के सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने चेक करके ये बताया था बहुत साल पहले, शुरू में जब हुआ है, 35 साल पहले की बात हो गई होगी, क्योंकि यही ब्रह्मा बाबा घूमते थे ना बहुत। नहीं, बैडमिंटन वहां जहाँ शांति स्तंभ है, बाबा एकांत में यही घूमते थे, तपस्या यहाँ कमरे में यही होती थी। ब्रह्मा की तपस्या तो फेमस है वैसे भी। तो आज हम चर्चा करेंगे गुणमूर्त जीवन की, और बहुत सारे आप में से भाई ज्ञान में नए भी हैं 1-2 साल के। अपनी सर्वश्रेष्ठ उन्नति के लिए, फास्ट जाने के लिए, हमें चारों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है। ज्ञान भी हमारा बल बन जाए, योग तो बल है ही, धारणाएं हमारे जीवन को डिवाइन कर दें, प्रेरक जीवन हो जाए हमारा, सेवा में निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, सेवा माना देना, देकर कुछ लेना गलत है। चारों को साथ लेकर चलेंगे तो तेजी से उन्नति होगी। इस जीवन में सबसे सुखद बात है ज्ञान और योग का, वो प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रमाण है कि हमारा जीवन सरल जीवन हो जाए, सहज भाव से जीवन जीने लगे। दुनिया वालों का जीवन को आप देखो, सहज नहीं जी रहे हैं लोग। उठते ही टेंशन, सोएंगे भी टेंशन लेकर, दिन भी कहीं चिंताओं से भरा, कहीं दुखों से, कहीं परेशानियों से, कहीं लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ। सहज जीवन, इजी गोइंग लाइफ, सहज, इसकी बहुत आवश्यकता है और ये हमारे ब्राह्मण जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसको हम केंद्र बनाकर कई जो हमारी धारणाएं हैं उस पर आ जाते हैं। हमें बहुत संतुष्ट होना है, संतुष्ट आत्मा। मैंने जब संतुष्ट रहने का अपनी धारणा बनाई थी यहां मधुबन में, तो एक संकल्प बहुत सुंदर होता था, भगवान को पाकर भी यदि हम संतुष्ट न हुए तो कब होंगे। ये बात बार बार चित्त को प्रेरित करती थी, जिसकी खोज थी, जिसको ढूंढ रहे थे युगों से, वो सम्मुख आ गया, आ ही नहीं गया, सब कुछ दे रहा है। उससे हमें सब कुछ लेना है और संतुष्ट करना है स्वयं को। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण लिखे हैं। स्थित प्रज्ञ संस्कृत शब्द है, स्थित प्रकार्थ है स्थित बुद्धि, स्थिर बुद्धि। जिसकी बुद्धि स्थिर है उस योगी के क्या लक्षण है, बहुत सुंदर बातें हैं वो गीता की। उसमें एक बात है कि जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जो प्राप्तियां हो रही हैं, जो सुख मिल रहा है उससे ही संतुष्ट आती है। और जब तक कोई मनुष्य संतुष्ट न हुआ तब तक बुद्धि स्थिर होगी भी नहीं, भटकती रहेगी। ठीक बात है या नहीं, स्थिर होगी नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या करना होगा हमें, किन चीजों का त्याग करना है, बोलो। सहज, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग, क्योंकि संसार में ये कंपटीशन भी ज्यादा चल गया 20-25 सालों से, धन ही सब कुछ है। और इस धारणा ने संसार को अशांति के गर्त में डाल दिया। अब धन सब कुछ है तो कैसे कमाएंगे, पाप से, पाप बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया। कितने घरों में भाई भाई के बंटवारे पे झगड़े, कोर्ट के केस भरे पड़े हैं, इच्छाएं ज्यादा हो गई, उसे कम मिले मुझे ज्यादा मिले। क्या याद रखेंगी माताएं, माताओं से पूछ रहा हूं, बोलो। हिस्से के बारे में पूछ रहा हूं, माताओं का सब्जेक्ट है, बुरा ना मानना। कल भी एक का आ रहा था मुझे, ये बड़ा भाई और ससुर कुछ नहीं देना चाहते, 80 लाख की तो दुकान है, हमें कुछ नहीं देना चाहते, क्या करूं, बोलो क्या करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पक्की बात। तो वो बहुत थोड़ा दे रहे थे उनको, 10 लाख केवल। मैंने कहा 10 ही ले लो, इसमें से बाबा को दे दो कुछ, तुम्हारे हिस्से में स्वयं भगवान आ गया है। कठिनाई उनको होगी, जब मैंने कहा ना कठिनाई, कठिनाई उनको भी ना हो, मैंने कहा तुम्हारी मानता है, ये तो अच्छी बात है, पर कर्म गति ही ये है, जो दूसरों का हिस्सा लेता है उन्हें कष्ट होता ही है। उनका कोरोना में चला जाएगा, किसी का कैंसर में जा रहा है, परेशानियों में जा रहा है, कोर्ट केस में जा रहा है। मैंने उसको समझा दिया, इतना ही लेकर शांत हो जाओ, तुम्हारे हिस्से में भाग्य विधाता है। खुश हो गई माता जी, ठीक है बस। तो ये इच्छाओं का त्याग, व्यर्थ की इच्छाएं जो धन को लेकर हैं, इनका त्याग करके हमें संतुष्ट आत्मा बन जाना चाहिए। क्या विचार है माताओं का? नहीं, माता चुप सी हो गई, ठंडी सी हो गई है, ये तो गलत बात है। क्या कह रही माता है? मैं सुनना चाहता हूँ थोड़ा, सबको बताऊंगा ना हमारी माता है ऐसी है अच्छी। तो जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, ये मनुष्य को भटकाती हैं, मन को भी भटकाती हैं, अशांति बहुत पैदा करती है, मनुष्य को कहीं भी चैन नहीं रहता। इसलिए मैं सब ब्राह्मणों को एक बात कह रहा हूं आजकल, अब धन के पीछे ना भागकर ईश्वरीय खजानों के पीछे भागो। और याद रखेंगे ये सिद्धांत, ध्यान से सुन लेंगे, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। जो ईश्वरीय खजानों से संपन्न होंगे, स्थूल खजाने पीछे पीछे आएंगे। ये सिद्धांत है बाबा के, ये भगवानों वाच में आपको सुनाए हैं, ये चिंतन नहीं सुनाया, ये बाबा के महावाक्य हैं। और जो ईश्वरीय खजानों में अपूर्ण रह जाएंगे, और जिनके पास करोड़ों की संपदा होगी, क्या होगा? करोड़ों बैंक में होंगे, वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होंगे। अब क्या करें करोड़ों को, ये तो काम ही नहीं आ रहे। डॉक्टर कह देगा खाना नहीं है, कुछ भी नली डाल दी है, इससे थोड़ा बहुत चला जाएगा दूध और पानी, बस यही जीवन है। ये स्थिति हो रही है और हो जाएगी, काम आएंगे सर्व खजाने। बाबा का साथ, हमारे पुण्य कर्म, ये बहुत अच्छी तरह सभी समझ लें, पुण्य ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। मुझे लोग बताते हैं, बस का एक्सीडेंट हो गया, सब को चोट लग गई, हम बाहर गिर के ऐसे ही बैठे थे जैसे कि इन्हें बैठा दिया हो। एक ने बताया बस में जा रहे, उसका इलौकिक टीचर पहले का, उसने कहा भाई ये सीट मुझे दे दो बेटा, तुम आगे आ जाओ। मैंने दे दी, टीचर है हमारे, आ जाओ। अब एक्सीडेंट हुआ कार बस का, उसको तो उस सीट पर बहुत चोट लगी, और कहा मेरा जो कांच था वो उस एक्सीडेंट में निकल के कहां गिरा, और मैं बाहर गिर के एक छोटी सी पहाड़ी सी थी उस पर ऐसे बैठा जैसे योगी बैठ जाते हैं। मुझे बड़ा आनंद हुआ, वाह ये क्या हो गया, देखो टीचर ने बेचारे ने मुझे बचा दिया, उसको चोट लग गई। तो पुण्य बहुत बड़ी चीज है, पुण्यों का खजाना खाता सबको बढ़ाते चलना है। आगे चलें, चिंतन करना इन सब बातों पर, एक एक का विस्तार है। बोल से सुख देना बहुत बड़ा पुण्य है, अपने बोल से अपने घरों में शांति और प्रेम का माहौल बना देना बहुत बुद्धिमानी है। बोल बिगड़ते हैं तो घरों में अशांति होती है। बोल कैसे हो? अब भाई बताएंगे इसको, नहीं तो माताएं कहेंगी हमारे पीछे पड़ गए। कैसे हो बोल? सुख देने वाले, सॉफ्ट, निरहंकारिता वाले। और सबसे अच्छे बोल होंगे वरदानी बोल। हम बोलें और दूसरों के कष्ट मिट जाएं, हम बोलें और दूसरों की समस्याएं समाप्त हो जाएं। बोल में वाइब्रेशंस होते हैं ना, तरंगे फैलती हैं। बोल सुखदाई, कैसे बोलना हो। हाँ नहीं, ये तो इसका अपोजिट हो ही गया। और बताओ जरा, कि बहुत कष्ट हो, हर्ट हो जाएं लोग, दिल दुख जाए, दिल से बददुआएं निकलने लगे हमारे बोल सुनकर, ऐसे बोल ना हो। हमें दुआएं देनी है। क्यों देनी है दुआएं? कौन है हम? इस देव देवियां पूर्वज हमारी दुआएं लोगों का कल्याण करेंगी। देखो आप तो यहाँ आए हैं, पर हम सब जो यहाँ के वासी हैं, उन्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना। आज मैंने अपनी एक चर्चा में हमारे किचन वाले बैठते हैं ज्ञान सरोवर के, उनसे कहा ये बात। हम एक ऊंचे स्थान पर हैं, बाबा ने कहा हुआ है, ये स्थान लाइट हाउस है और हम हैं पूर्वज। हम इमोशनली भी संसार से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से। हमारे संकल्प भी संसार को चैन देंगे। ये बात चली थी, सुसाइडल टेंडेंसी दुनिया में बढ़ रही, जीव घात करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है दुनिया में। लोग परेशान होते हैं तो सोच लेते हैं बस मर जाएं, क्या करना, मर के ही सुखी होंगे, सुख का कोई रास्ता बचा नहीं है, मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम एक बहुत अच्छा अभ्यास किया करें, मैं फरिश्ता हूं, आकाश में हूँ, ये अभ्यास बढ़ाएंगे। आकाश में ऊंचे हो गए ना तो हमारा फ्लो संसार में पहुंचेगा। पूर्वज हूँ और संसार को सुंदर संकल्प दिया करें, बात करें। सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है तो हम बात करें, जीवन बहुत मूल्यवान है, जिसने ये दिया है उसको ही इसको लेने का अधिकार है। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, जीवन की यात्रा बहुत श्रेष्ठ है, निराश नहीं हो। कई सुंदर संकल्प देंगे, बुरे दिन समाप्त होंगे, तुम्हारे सुख भरे दिन आने वाले हैं। अच्छे अच्छे संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलेंगे और हमसे संसार जुड़ा हुआ है उनको पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना ये बात? नए जो है वो भी समझ लें, अपने घर पे भी कर सकते हैं आप इसका प्रयोग। तो हमारे बोल संबंधों में मधुर रस घोल दे, ऐसे बोल बोलने हैं। संबंधों की कड़वाहट भी संसार में बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। लोग अच्छा बोलना भूल गए, सबकी बात नहीं है, पर अधिक लोग घरों में अच्छा बोलना भूल गए हैं। माताएं भी बच्चों को क्या नाम देती हैं आजकल? बड़ा अच्छा नाम देती हैं माताएं, दिए ही हुए हैं। बदमाश। अब यहां से मैं ये सब नहीं बोलूंगा, शैतान, ये कॉमन नाम हो गए हैं। बच्चे तो खुश होते हैं, कोई बात नहीं, पर आप सबको माताओं को एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप बच्चों को सवेरे उठा रहे हैं, बच्चों का अंतर मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, उस टाइम जगा होता है। जो शब्द आप उनको बोल रहे हैं उसकी तरंगें वो ग्रहण कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आगे चलकर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसलिए सुंदर शब्द बोलकर उठाएंगे। माताएं तो अच्छे बोल बोलती हैं, मैं तो सब जानता नहीं। आप सब अपने बच्चों को, छोटों को उठाओ बहुत प्यार से, वो जरूर करवट बदलेंगे, तंग करेंगे आपको, उठेंगे नहीं। ये सब तो बच्चों को, हम सब ने भी तो यही किया, या आपने नहीं किया था? ये सब ने यही किया, बच्चे तो यही करेंगे। लेकिन सुंदर वाइब्रेशंस दें बच्चों को, सुंदर बोल बोले, उनके कान कानों में जो पहली आवाज पड़े ना माँ की या बाप की, वो उनके भावी जीवन का निर्माण करती है, ये भूलना नहीं है। पहली आवाज खास करके, वो सोए हुए भी सुनेगा वो आवाज, सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है उनका, बहुत ध्यान देंगे इस बात पे, इसलिए परेशान होके ऐसा वैसा चिढ़ जाती है ना माताएं भी, चिढ़ना भी ठीक जरूरी होता है, ज्यादा काम होता है, कईयों को जॉब पे जाना है, अपनी भी तैयारी करनी है, उनको भी तैयार करना है, वो जरा हाँ हूं कर रहे हैं तो होगा, लेकिन हमसे उनको अच्छे वाइब्रेशंस जाएं घरों में, बोल में। एक चीज आप अगर ध्यान दे दें तो घरों में प्यार की गंगा बहने लगेगी, और वो है एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, समझते हैं एप्रिशिएशन, प्रशंसा, प्रशंसा। कमियां तो सब निकाल के बुरे बोल दे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, ये ठीक नहीं करते हो, एप्रिशिएशन, प्रशंसा। अब एक दिन से शुरू करो, उसी दिन से आपके घर में प्यार का माहौल बन जाएगा। बच्चों को भी अप्रिशिएट करके आप बुद्धिमान बना सकते हैं, उनकी सोई हुई चीजों को जगा सकते हैं, ठीक है या नहीं? बच्ची बहुत खुश हो रही मेरी बात सुन के। कौन सी क्लास में तुम? सेवेंथ, टेंथ, नाइन्थ, बहुत खुश हो रही है, तुम्हारे काम की बात आ रही है ना। तुम भी सवेरे जब उठो तो मैं बुद्धिमान हूँ तीन बार याद किया करो, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी पावर परफेक्ट है, देखो कितना सुंदर होगा। तो बोल, जैसे बोल हम सुनना चाहते हैं वैसे ही सुनाए भी, सब चेंज करेंगे। केवल सुन के खुश नहीं होंगे, हाँ बहुत अच्छी बात सुना दी, चेंज कर दो आज से। हम विभिन्न परिस्थितियों में बोल तो परिस्थितियों में भी करते हैं ना, कोई आपको तंग कर रहा हो, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा हो, कोई आपको बुरा बोलता हो बार बार, मन उसको गुस्सा आएगा, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में अपने बोल अच्छे रखना, ये एक शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। इस पे सभी बहुत ध्यान देंगे और आगे चलें, बहुत आगे हमें बढ़ना है अध्यात्म का। एक प्रैक्टिकल स्वरूप है निरहंकारी जीवन, जो भी ज्ञान में चल रहे दो चार पांच साल से भी, वो ध्यान दें, अपने अहम को पहचान कर उसे नष्ट करते चलना है। पहचानना पहली चीज, बहुतों को पहचान नहीं होती। और अहम का, ईगो का सूक्ष्म रूप क्या होता है? मैंपन, मैंपन। और सभी याद रखेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, बाबा हम सभी को अपने महान कार्य में यूज करता है। हमारा कर्तव्य है केवल अपने को योग्य बनाना, सेवा वो हमसे लेगा। लेकिन अगर हमारे पास मैंपन आ गया किसी योग्यता का, तो वो हमें यूज नहीं कर पाएगा, फिर हमारी अपनी जो है ना जो योग्यताएं हैं वही यूज होंगी। लेकिन वो हमें यूज करे तो हमारी योग्यताओं से हजारों गुना बड़ी सफलता हमें मिलती रहेगी। इसलिए निरहंकारी बनना है। बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूं, अव्यक्त मुरली चलाते हुए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ये आत्मा नंबर वन इसलिए गई क्योंकि इसने मैंपन को सबसे पहले जीता, बहुत जीत लिया था बाबा ने। एक अव्यक्त मुरली में भी आ गया, बाबा ने अपने अधिकारों का भी त्याग कर दिया। कमरा भी पुराना था, ये तो अब सुंदर बनाया है, उसमें ये गिरती रहती थी वो दीवारों की, क्या लगाते थे, चूना, 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 पहले सीमेंट ज्यादा अच्छे नहीं आते थे, चूने से चिनाई होती थी और गिरती रहती थी, बरसात में पानी भी टपकता रहता था। ये हवाई महल इसको कहते हैं, इधर 3-4 कमरे हैं ना। बाबा को कहा, ये बने थे कि बाबा इसमें शिफ्ट कर देते हैं आप। बाबा ने कहा नहीं, नए कमरे बच्चों के लिए। बाबा तो पुराना रथ, तो पुराने मकान में ही रहेगा। सब कुछ त्याग। एक दरी की कहानी भी है बाबा की। बाबा कमरे में एक दरी पड़ी हुई थी, नई दरी कोई लाया, कहा सबने बाबा ये नई दरी आपके कमरे में डालते हैं, पुरानी तो धो के कहीं भी यूज होगी। बाबा ने कहा नहीं, बाबा का तन पुराना है, दरी भी पुरानी है। अधिकारों का भी त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग बच्चों के लिए। लौकिक में भी तो माँ बाप ये करते ही है ना, बच्चों को सब कुछ। तो मैं पन कहीं न रहे, चेक कर ले, बिन बिन रूप में आता है। मैं घर की मालकिन हूं, चेक करेंगे सभी। मैं घर में कमाने वाला हूं, मैं ना कमाऊं तो काम ही न चले। मैं मालिक हूं, बहुत सारे स्वरूप हैं मैं के। मेरे में ये योग्यता है, समाज में मेरा बहुत नाम है, मुझे बहुत सम्मान मिला है, मेरे परिवार बच्चे बहुत योग्य हैं, सब मैपन में मैं बहुत धनवान हूं, बुद्धिमान हूं। क्या रखेंगे याद? मैपन जाए, क्या याद रखेंगे? बोलो, बहुत प्रैक्टिकल चीज। बाबा के एक शब्द सुन लें आप, ये सब भी ठीक है जो आप बोल रहे हैं। बाबा ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु देन है, प्रभु देन। और ये सत्य है, भक्ति में भी तो यही चलता रहा, प्रभु देन। सूक्ष्म मैपन भी बहुत हो जाते हैं, भाई मेरी इस योग्यता के कारण इस कार्य में सफलता मिली। अब मिली भी होगी, ये सत्य है, लेकिन हमें इसके स्थान पर बाबा को ही लाना है। ये विशेषता भी उसने हमें दी, हमारी तो खत्म हो गई थी ना सब चलते चलते। 5,000 साल की यात्रा जो की तो सब खत्म हो गया। तो सब कुछ प्रभु देन है। बोलो, और कौन सी धारणा जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत है, लिस्ट तो लंबी है, यहाँ भी 36 लिखी हुई है। सरलता से हमने शुरू किया था। सरलता का अर्थ होता है समय अनुसार अपने को मोल्ड कर लेना, हर बात को सहज भाव से लेना। मान लो रहने को कहीं भी मिल गया, आपका ग्रुप तो छोटा है, बड़े ग्रुप आते हैं शांतिवन में आते तो एक एक कमरे में ज्यादा को भी रहना पड़ता। जब हमारे पास मधुबनी था तो पता कहाँ कहाँ रहना पड़ता था, डाइनिंग हॉल, सारे बरांडे, और हम मधुबन निवासी अपने अपने कमरे खाली कर देते थे आने वालों के लिए। कहीं भी सो, हम लोग कहीं भी लगा देते थे अपना बिस्तर, कहीं स्टोर में, डिपार्टमेंट में, बरांडों में, किचन के स्टोर्स में हम लोग सो जाते थे। सरलता, नहीं तो कहेंगे हम क्यों जाएं? सोने वाले भी कहें हम बरांडे में सोने के लिए आए क्या? 10 को रख दिया एक ही कमरे में, विशाल भवन के छोटे कमरे हैं, एक एक के लिए 10 लोगों को एक दिया जाता था, कुछ बाहर सो जाना। तो सरल चित्त व्यक्ति क्या कहेगा? ठीक है सब। और जो सरल चित्त नहीं है, क्यों? क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे, परेशानी ज्यादा होगी। सरल चित्त व्यक्ति हर चीज का आनंद लेगा। भोजन आप अपने अपने घरों में अलग अलग खाते हैं, यहाँ एक सा भोजन सबको मिलता है। अब देखो, मैं सोचा करता हूँ, हमारे यहाँ भारत के सभी स्टेट के लोग आए हुए, हर स्टेट में भोजन अलग अलग होता है, लेकिन सब एक सा खाते हैं, लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया। उसी में मजा आता है, उसी में आनंद आता है, ये सरलता है। तो हम सहज भाव से जीवन जिएंगे। आप बिजनेस करते हैं, कभी ज्यादा फायदा हुआ, कभी कम हुआ, कभी नहीं हुआ, स्वीकार करके सहज भाव से आगे बढ़ना। तो जो संतुष्ट होते हैं, जो सरल भाव में रहते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयां नहीं होती। समस्याएं भी क्या हैं? मैं क्लासेज में सुनाया ही करता हूं, वो बात बाबा की मुरली से है कि हम सोच सोच कर समस्याओं को बढ़ा देते हैं। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोचते ज्यादा हैं। अगर हम सोचना कम करके एक ही बात सोचें, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। बीमारियों के बारे में भी सोचें, ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे आज एक बंगाल से फोन, एक लड़की का कि मेरी माँ को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा अधिक से अधिक 6 मास और बहुत ही हुआ तो 1 साल तक जी सकती है, इसके ज्यादा नहीं। अब बेचारे परेशान, निराश, ज्यादा वैसे नहीं, बहुत बूढ़ी है माता जी, 50 साल की, निराश। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? वही मैंने किया। क्या होना चाहिए ऐसे में? उनके मनोबल को बढ़ाना, कि नहीं संकल्प करो मैं 10 साल जीऊंगी, 15 साल जीऊंगी, वही होगा। कल मैंने आपको बताया था ना, हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है। और आगे सुन लें, जो संकल्प हम बार बार करते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क उसी अनुसार अपनी सेटिंग कर लेता है, मैनेज कर लेता है। अब उसने मान लिया कि बस अब तो मैं 6 मास में मर जाऊंगी, तो क्या होगा? ब्रेन के बहुत सारे सेल डेड होने लगेंगे। और उसने संकल्प कर लिया मैं 15 साल जीऊंगी, बाबा मुझे 15 साल जीना, आपकी सेवा करनी है, ब्रेन उसी तरह से सेटिंग करने लगेगा, अनेक सेल जागृत जीवित होने लगेंगे, ब्रेन एनर्जेटिक होने लगेगा, बीमारियों पर भी विजय हो जाएगी। इन बातों को समझते हुए हम अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे। तो हमें ध्यान देना है, बहुत सुंदर सिद्धांत है, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही, हाँ, डबल होकर भी, डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। तो क्या देंगे सोच लो, सोच लो। इसलिए भक्ति में क्या रसम है? अन्न दान करो, बर्तन भी दान कराते हैं, वस्त्र भी दान कराते हैं, धन भी दान कराते हैं। यही सिद्धांत चला आ रहा, और ये सिद्धांत भक्ति और ज्ञान की बात नहीं, ये कर्मों की गुह्य गति का सिद्धांत है। तो हम सुख देने लगे, सुख देने वाले को सुख बहुत मिलता है, प्यार देने वाले को प्यार मिलता है, सम्मान देने वाले को सम्मान मिलता है। और ये भी याद रखेंगे, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वैसा ही हमसे भी होगा, वैसा ही व्यवहार हमको भी प्राप्त होगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है इस बात पर, हम क्या व्यवहार करते हैं। मैं राजस्थान के एक परिवार की कहानी सुनाया करता हूँ, अखबार में छपी थी। माँ बाप बुजुर्ग थे, एक ही लड़का था, उसकी शादी हुई, एक 2 बच्चे थे उसको। अब पत्नी तेज आई, उसने उनको एक अलग कमरा दिलवा दिया, खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन। एक बार दे आते थे, फिर पूछते नहीं थे। बच्चा 12 साल का देख रहा था 5-7 साल से। अब वो दादा दादी बाबा तो प्यार करते थे ना बच्चों को बहुत, वो उनके पास आते जाते थे। वो पूछता था आपको भूख तो नहीं लगती? नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। मृत्यु हुई दोनों की, कुछ कारण हुआ, मृत्यु हो गई, चिता जली। अब ये जो बच्चा था 12 साल का हो गया था, ये मिट्टी के बर्तन जिसमें उनको भोजन दिया जाता था उसने इकट्ठे किए और चिता के पास, हाँ नहीं, उनके माँ बाप ने चिता के पास रख दिए, भाई अब इन बर्तनों का तो फायदा नहीं होगा। अब जब चिता को आग लगा रहे थे, ये बच्चा वो बर्तन उठा के भागा घर की ओर। कहाँ ले जा रहा बर्तन? कि ये आपके काम आएंगे। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं। सभी को सीख लेना है अपने बड़ों से जैसा करते हैं। प्रथा हो गई ना आजकल समाज में, माँ बाप सभी नहीं पर 50% पर आ गई है। तो कई बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, कई बहुत केयर करते, मैंने ऐसे भी देखे बहुत केयर करते हैं। बाप 90 साल का है तो चार बच्चे चारों सेवा में लगे हुए बेचारे, नहीं हमारे फादर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमें रिटर्न करना है। ऐसे अच्छे बच्चे बहुत हैं दुनिया में। हमें ऐसी परंपरा चलानी है कि हमारा जीवन दूसरों को सुख देने के लिए हो। धन तो आएगा और चला जाएगा, आज जो धन हमारे पास है वो कल किसी और के पास था और कल किसी और के पास होगा। धन तो गति है, इसमें गति है, ये स्थिर नहीं है। धन जितना हम दूसरों को सुख देने में लगा दें उतना ही हमें सुख मिलेगा और धन भी बढ़ेगा। धन में फ्लो है, प्रवाह है, सभी सुन ले छोटे भी। इसका फ्लो अगर हमने रोक दिया तो उधर से आना भी रुक जाएगा। इसलिए इसको परोपकार में भी लगाते रहना। इसलिए हिंदू धर्म में हमारे भारत में 10% अपनी आमदनी का परोपकार में, धर्म के कार्यों में लगाने का सिद्धांत ही बना दिया था आचार्यों ने। और वो इसलिए कि मनुष्य में देने की प्रवृत्ति बनी रहे। तो दो लाइनें हैं आज भी, एक देने वालों की और एक लेने वालों की। हम किस में हैं सोच लें। हमारा अंतर मन हमेशा दूसरों से डिमांड करता है या हमारे अंतर मन में ये समाया हुआ है कि हम सबको देंगे, हम देने वाले रहे जीवन भर, लेने की कामना नहीं। लेने वाले हमेशा अभाव में जीते हैं और देने वाले भरपूर जीते हैं। तो बहुत सुंदर समय हम सबके सामने आया है। हमारी सुंदर धारणा होनी चाहिए, इस समय को सफल करें। इस समय भाग्यवान आत्माओं को ही मिला है, है या नहीं? भगवान का मिलन, वो भाग्य बांट रहा है, वो सवेरे सवेरे वरदान लुटाता है, वो हमारी जन्म जन्म की भक्ति की जितनी भी कामनाएं थी सबको पूर्ण कर रहा है। अब तब भी की थी, अब और ज्यादा कर रहा है। तो ये सुंदर समय, इसका पूरा फायदा उठाएंगे चिंतन से। चिंतन से एक चिंतन दे रहा हूं मैं आपको। इस सुंदर समय पर लिख लो लिखने वाले, हमें अच्छे से अच्छा क्या कर लेना चाहिए, प्लान बनाएंगे अपना। जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं उसमें अच्छे से अच्छा क्या कर लूं, चिंतन करेंगे रोज रोज अच्छे से अच्छा कर लें। ये अवसर एक बार चला गया दोबारा हाथ में नहीं आएगा। मैं सोचा करता था, जब अब से 50 साल पहले सोचता था, यहाँ बाबा आते थे अव्यक्त बाबा, ये हॉल भी नहीं था, नीचे वाला हॉल था। मैं सोचता जब बाबा आखिरी बार आएगा, उसे तो पता होगा आपके बाद में नहीं आऊंगा, हमें तो नहीं पता होगा, उसके मन में क्या फीलिंग होती होंगी, बच्चों से कितना प्यार कि इनके ये चेहरे आखिरी बार देख लेता हूं, अब तो ऊपर से ही देखूंगा, अब वो समय आ गया। देखो ऐसे ये समय बहुत ब्राह्मण लोग सोचते ही रह जाएंगे, 20 साल मिले थे हमने कुछ नहीं किया, दूसरों को देखने में समय बिता दिया, अपने को देखना भूल गए, दूसरों से बातें करते रहे, भगवान से बातें नहीं की, सुंदर अवसर मिला था। तो ऐसे अवसर को सफल करना, समय की वैल्यू को समझना, एक एक संकल्प को वैल्यू देना, ये बुद्धिमान आत्माओं का अब कर्तव्य है। हमारा एक एक संकल्प बहुत मूल्यवान है, मैं बता रहा हूं आप सबको, बहुत मैं आजकल सुनाता हूं ताकि सबको पक्का हो जाए कि हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशंस संसार को पहुंच रहे हैं। निगेटिव संकल्पों की बात हम नहीं करते, हमारे सुंदर संकल्प, हमारे शुद्ध संकल्प, हमारे कल्याणकारी संकल्प विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत सुंदर भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हमारे एक एक संकल्प का महत्व है। बाबा के शब्द, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है और एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। याद आया करेंगे ये दिन। ये भी मेरा अपना चिंतन था यहाँ मधुबन में, कभी मैंने इस पर लिखा भी था ज्ञानामृत में, याद आया करेंगी ये घड़ियां, कहाँ भगवान का मिलन होता था। हर हफ्ते दो बार आते थे बाबा, बड़ा सुखद अनुभव होता था। अब हम भी उस अनुभव को याद करते हैं, जिन्होंने उसका सुख नहीं लिया वो वैसे याद करते हैं। तो भगवान के मिलन का सुख मिल रहा है। अब अपने मन को दुनियावी आकर्षणों में भटकाने का समय नहीं है। माया ने भी जाल फैला दिया ना बहुत बड़ा। कौन सा जाल है युवकों के लिए? मोबाइल, नेट, इससे भी बचना है। बस जितनी जरूरत हो उतना ही, नहीं तो इसमें ही सारी गंदगी इसमें है, सारी माया इसमें भरी हुई है। बहुत बच्चों का हाल बिगड़ रहा है इससे। वो सुनते भी नहीं, माँ बाप के भी नहीं सुनते, वो चस्का ऐसा लग जाता है एडिक्शन, और ये एडिक्शन मानसिक रोगों को जन्म दे रहा है। इसलिए हर चीज में संयमित रहते हुए अब समय का पूरा लाभ उठाएंगे, अपने जीवन को बहुत सरल, निरहंकारी, नम्र, सॉफ्ट, स्वीट, ये हमारे ज्ञान के लक्षण है ना। हमें क्रोध आता रहे बात बात में तो लोग भी हंसेंगे तो सही ना हम पे, कि सबको शांति का पाठ सिखाने वाले बहुत गुस्सा करते हैं, हमें भी लज्जा आएगी। और क्रोध जो है न केवल शांति को भंग करता है बल्कि एकाग्रता को नष्ट करता है, विवेक शक्ति को नष्ट करता है। इसलिए चित्त को शांत करना है। सवेरे उठकर पहले 5-7 मिनट में सुंदर संकल्पों से अपना श्रृंगार किया करें। मैं बहुत भाग्यवान हूं, शांत हूं, भगवान का मिलन हो गया, उसके कितने समीप आ गए, वो स्वयं हमारा भाग्य बना रहा है। जितने सुंदर विचारों से शुरुआत करेंगे दिनचर्या की, उतना ही दिन सुंदर, उतना जीवन सुंदर। तो उठेंगे इस तरह विचार करके मुस्कुराएंगे, और सोएंगे तो भी मुस्कुराते हुए, तो भाग्य भी मुस्कुराता रहेगा। तो बहुत अच्छा किया आप सभी ने, खुल जाएगा आप सब आने जाने का, फिर आते रहना। ओम शांति।
से भर ली।